प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
स्थापित है स्वर्ग में प्रभु का जीव वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन। प्यासी आत्मा की भी
कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरंभ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
जिस हाल में है गम है या है खुशी, आइए आप यीशु के पास आइए। राज क्या है मसीह पास खुद देखिए, चोट भी गर लगे आप मुस्काइए। आप जिस हाल में है जहाँ से मिली है बुराई या कहीं, अपना जिसको कहे वो मिला ही नहीं। आप जब जब गिरे लोग तब तब हंसे, आग बढ़ के संभाले जो था ना कहे। है मसीह यार सबका आपको चाहता, आके यीशु के सीने से लग जाइए। आप जिस हाल में हैं जो मसीह पास आया वो है खुश नसीब, अब तो उसको यहाँ कुछ नहीं चाहिए। प्यार का एक खजाना मसीह ने दिया, सारी दुनिया उसकी है खुद ही आजमाइए। राह उसकी मसीह, मंजिल उसकी मसीह, आप भी उस मसीह को अपनाइए। आप जिस हाल में है गम है या है खुशी, आइए आप यीशु के पास आइए। आप जिस
इसी सुंदर संगीत रचना के साथ ही हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम पुराने नियम से शमूएल नबी की पुस्तक का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम सर्वप्रथम इस पुस्तक के दूसरे अध्याय के 18 से 36 पदों को देखेंगे, तत्पश्चात अध्याय 3 और 4 का अध्ययन आरंभ करेंगे। स्वाइये से पूर्व के हम अपने कार्यक्रम को आरंभ करें अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए। प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे महापराक्रमी जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं इन मधुर और पवित्र क्षणों के लिए जो आपने अपनी महान करुणा से हमको प्रदान किए हैं कि हम आपके पवित्र और जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि प्रदान करने की कृपा करें, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन को हमारे लिए वास्तविक बना दें कि हम इस पर विश्वास कर सकें और आपकी आज्ञा का पालन कर सकें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी संकट में है, क्लेश में है, निराशा में है, किसी घोर पाप में अपराध में फंसा हुआ है, प्रभु आप उसका छुटकारा करें, हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र आइए हमारे साथ देखिए पुराने नियम से शाऊल नबी की पुस्तक, उसकी प्रथम पुस्तक दूसरा अध्याय, पहला शाऊल दूसरा अध्याय 18 पद है, यह इस प्रकार से लिखा है, परंतु शाऊल बालक ही था, वे महीन मलमल का बना हुआ एपोद पहनकर यहोवा के सामने सेवा करता था। जब उसकी मां प्रतिवर्ष अपने पति के साथ वार्षिक बलिदान चढ़ाने आती तब उसके लिए एक छोटा चोगा बनाकर लाती थी। मेरे मित्र, हम यहां बालक शाऊल को परमेश्वर के तंबू में सेवा करते देख रहे हैं। शाऊल की मां प्रतिवर्ष उसके लिए एक चोगा बनाकर लाती थी। परमेश्वर की कृपा से हन्ना ने 3 पुत्र और 2 पुत्रियों को भी जन्म दिया। हन्ना ने अपनी समस्या को प्रभु के सामने रखा, स्वयं को प्रभु के समक्ष उंडेल दिया, रिक्त कर दिया, तो प्रभु परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, फलस्वरूप उसका जीवन आशीषों से भर गया। हमने उसकी प्रार्थना में दूसरे अध्याय में उसकी आशीषों की चर्चा को सुना और धन्यवाद के विषयों को और उसके भविष्यवाणी के वचन को सुना। 21वें पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती होती रही और उसने 3 पुत्रों तथा 2 पुत्रियों को जन्म दिया। शाऊल बालक तो यहोवा के सामने बढ़ता गया। अग्रिम पदों में हम एली याजक के पुत्रों के दंड के विषय में हम पढ़ेंगे, तो 22वें पद से देखिए, अब एली तो बहुत बूढ़ा हो गया था, उसने वह सब सुना जो उसके पुत्र सब इसराइलियों के साथ करते थे और ये भी कि वे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म करते थे। तब उसने उनसे कहा, अर्थात एली ने अपने पुत्रों से कहा, मैं इन सब लोगों से तुम्हारे दुष्कर्मों के विषय सुनता हूं, ये सब तुम क्या करते हो मेरे बेटो? नहीं, क्योंकि ये सब शिकायत अच्छी नहीं जो मैं यहोवा की प्रजा में प्रचारित होते हुए सुनता हूं। 25वें पद में हम पढ़ते हैं, यदि एक व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध पाप करता है तो परमेश्वर उसकी मध्यस्थता करेगा। एली अपने पुत्रों को समझाता है और एक नियम बताता है, एक सिद्धांत बताता है कि यदि एक व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध पाप करता है तो परमेश्वर उसकी मध्यस्थता करेगा, परंतु यदि कोई व्यक्ति यहोवा के विरुद्ध पाप करता है उसके बचाव के लिए कौन विनती कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें यही नियम बताया कि मनुष्य का प्रत्येक पाप क्षमा किया जाएगा, किंतु यदि वह पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करेगा तो उसका पाप क्षमा नहीं होगा। और एली भी इसी प्रकार का नियम अपने पुत्रों के समक्ष रखता है। तो हमने इन पदों में देखा कि एली के पुत्र खुलेआम दुष्टता करते थे, न उन्हें प्रजा का भय था, न अपने पिता का और न परमेश्वर यहोवा का। तब 27 से 29 पदों में लिखा है, फिर परमेश्वर के एक भक्त ने एली के पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है, जब तेरे पिता के घराने मिस्र में फिरौन के घराने की बंधुआई में थे तब क्या मैंने अपने को उन पर सचमुच प्रकट नहीं किया था? और क्या मैंने उनको इसराइल के सब कुलों में से अपने याजक होने के लिए नहीं चुना कि वे मेरी वेदी के पास जाएं, धूप जलाएं और मेरे सामने एपोद पहनकर उपस्थित हुआ करें? क्या मैंने तेरे पिता के घराने को इसराइलियों के सब अग्नि बलि नहीं दिए थे? तब तुम मेरे बलिदानों और मेरी भेंटों पर जिनको मैंने अपने निवास स्थान में चढ़ाने की आज्ञा दी है क्यों लात मारते हो? और तू अपने पुत्रों को क्यों मुझसे बढ़कर आदर देता है? तू मेरी प्रजा इसराइल की प्रत्येक भेंट का सर्वोत्तम भाग खाकर क्यों मोटे होते जाते हो? प्रिय मित्र, हमने एली के विरुद्ध परमेश्वर की शिकायत को पढ़ा है। परमेश्वर ने एली के पास अपने एक भक्त को भेजा और उसने उसे दंड के विषय में बता दिया। परमेश्वर पिता अब याजक द्वारा कार्य नहीं करेंगे, वह अब याजक नबी द्वारा कार्य करेंगे। वो नबी को ही याजक बनाएंगे और यह व्यक्ति शामुल होगा, वह याजक और नबी दोनों होगा, क्योंकि याजक ने परमेश्वर की सेवा को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी विधि के अनुसार नहीं किया है। याजक लोगों की प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख ले जाते हैं, ये उनका कार्य है, और नबी परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाता है। अब एक ही व्यक्ति ये दोनों कार्य करेगा। सो आइए अग्रिम पदों में देखें, 30वें पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए इसराइल का यहोवा परमेश्वर यों कहता है, यहां परमेश्वर अपने दंड की घोषणा करता है, इसराइल का यहोवा परमेश्वर यों कहता है, मैंने कहा तो था कि तेरे और तेरे पिता के घराने सर्वदा मेरे सम्मुख चला करेंगे, परंतु यहोवा अब यह कहता है, ये मुझसे दूर हो। यहां परमेश्वर अपने इरादे को बदल देता है, क्योंकि एली के परिवार ने परमेश्वर की सेवा का इरादा बदल दिया। परमेश्वर कहता है कि ये मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करें मैं उनका आदर करूंगा, क्योंकि जो मेरा आदर करें मैं उनका आदर करूंगा, और जो मेरा तिरस्कार करते हैं वे छोटे समझे जाएंगे। देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं तेरा और तेरे पिता के घराने का सामर्थ्य तोड़ दूंगा, जिससे तेरे घर में कोई बूढ़ा ना होने पाएगा, अर्थात परमेश्वर उनकी आयु को छोटा करेगा, कम करेगा। 32वें पद में पढ़ते हैं, इसराइल का मैं कितना ही उपकार क्यों ना करूं, उस पर भी तू मेरे निवास स्थान का दुख ही देखेगा, और तेरे घराने में कभी कोई बूढ़ा नहीं होने पाएगा, फिर भी मैं तेरे कुल के सभी मनुष्यों को अपनी वेदी की सेवा से ना हटाऊंगा कि उनकी आंखें रोते रोते धुंधला जाएं और मन शोकित हो, तेरे घराने के वंशज जब जवानी में ही मर मिटेंगे, तेरे घराने के वंशज सब जवानी में ही मर मिटेंगे, तेरे लिए इस बात का चिन्ह वह घटना होगी जो तेरे दोनों पुत्रों होपनी और पीनहास पर घटेगी, कि वे दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। मेरे मित्र, 30 से 34 पदों में हम परमेश्वर के दंड की घोषणा को पढ़ते हैं, और 35वें पद में लिखा है, परंतु मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक खड़ा करूंगा जो मेरे हृदय और मेरे मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसके लिए चिर स्थायी घर बनाऊंगा, और वह मेरे अभिषिक्त के सामने सदा चलता रहेगा। प्रिय मित्र, ये संकेत किसकी ओर है? ये संकेत प्रभु यीशु मसीह की ओर है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 18वें अध्याय के 15वें पद में प्रभु यीशु मसीह को नबी कहा गया है, और यहां उन्हें याजक कहा गया है। वह नबी और याजक दोनों हैं। प्रभु यीशु मसीह नबी, याजक और राजा हैं। केवल वही हैं जो इन तीनों पदों को संभाल सकते हैं, और उन्हीं में यह योग्यता है। तब आइए तीसरे अध्याय को आरंभ करते हैं। तीसरे अध्याय का शीर्षक है शामुल की बुलाहट। हम देखेंगे कि परमेश्वर पिता अब याजक के द्वारा अपना कार्य नहीं करेंगे, वरन वह याजक नबी द्वारा क्रियाशील होंगे। शामुल प्रभु की सेवा करेगा, किंतु उसका पद नबी का होगा। वह प्रभु का याजक और नबी दोनों होगा। परमेश्वर पिता राजा से प्रत्यक्ष रूप में नहीं बोलेंगे, वह उससे नबी के द्वारा बात करेंगे। सो आइए परमेश्वर के इस कार्यक्रम को हम अपने कार्यक्रम में देखेंगे। शामुल नबी की पुस्तक, उसका तीसरा अध्याय प्रथम पद। अब बालक शामुल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा के वचन प्राप्त करना दुर्लभ था और दर्शन कम मिलते थे। मित्रवर, हम यहां पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता ने स्वयं को मनुष्य पर प्रकट करना बंद कर दिया था, किंतु अब वह शामुल के द्वारा यह कार्य आरंभ करेंगे, क्योंकि शामुल परमेश्वर के मन का व्यक्ति मिल गया है। 2 से 7 पदों में हम पढ़ते हैं, और ऐसा हुआ कि उन दिनों एली की दृष्टि धुंधली पड़ने लगी थी और वह स्पष्ट नहीं देख सकता था। तब एक दिन वह अपने स्थान पर लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक नहीं बुझा था, और शामुल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक रखा था लेटा था। तब यहोवा ने शामुल को पुकारा, और उसने अर्थात शामुल ने कहा, क्या आज्ञा? तब वह दौड़कर ईली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा? उसने उत्तर दिया, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। इसलिए वह जाकर लेट गया। परंतु यहोवा ने उसे पुनः पुकारा, शामुएल। अतः शामुएल उठा, उसने ईली के पास जाकर कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा? परंतु उसने उत्तर दिया, मेरे पुत्र, मैंने नहीं पुकारा, जाकर लेट जा। शामुएल तो अब तक यहोवा को नहीं जानता था, ना यहोवा का वचन अब तक उस पर प्रकट हुआ था। मेरे मित्र, इन पदों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर यहोवा शामुएल को पुकार रहा है, शामुएल के समक्ष स्वयं को प्रकट करना चाहता है, क्योंकि अभी तक शामुएल यहोवा को नहीं जानता था। तब आठवें पद में हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा ने तीसरी बार शामुएल को पुकारा, शामुएल उठकर ईली के पास गया, उसने कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा? तब ईली ने समझ लिया कि यहोवा इस बालक को पुकारता है, और इसलिए ईली ने शामुएल से कहा, जा लेट जा, यदि वह तुझे फिर पुकारे तो कहना, कहे प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। अतः शामुएल जाकर अपने स्थान पर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ, उसने पहले के समान पुकारा, शामुएल, शामुएल। तब शामुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। प्रिय मित्र, ये चौथी बुलाहट है। परमेश्वर ने शामुएल को चौथी बार बुलाया है। परमेश्वर पिता शामुएल को एक विशेष सेवा के लिए बुलाते हैं, नबी अर्थात भविष्यद्वक्ता की सेवा। और सर्वप्रथम परमेश्वर पिता उसे ईली महायाजक के विषय संदेश देते हैं। परमेश्वर ने शामुएल को पुकारा और शामुएल ने कहा, मैं सुनता हूं। और इसलिए परमेश्वर निरंतर शामुएल को अपना संदेश देते रहेंगे, क्योंकि शामुएल परमेश्वर का संदेश सुनने के लिए तैयार है। 11 से 14 पदों में हम पढ़ेंगे, तब यहोवा ने शामुएल से कहा, देख, मैं इसराइल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे प्रत्येक सुनने वालों के कान, दोनों कान झंझना जाएंगे। उस दिन ईली के परिवार के विषय मैंने जो कुछ कहा है उन सबको आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैंने उसे बता दिया है कि मैं उसके परिवार का उन अधर्म के कामों के विषय सदा के लिए शीघ्र न्याय करने वाला हूं जिनको वह जानता है, क्योंकि उसके पुत्र अपने ऊपर स्वयं शाप लाए हैं और उसने उन्हें नहीं डांटा इसलिए मैंने ईली के परिवार के विषय शपथ खाई है कि ईली के परिवार के अधर्म का प्रायश्चित ना तो बलिदान से और ना ही भेंटों के द्वारा कभी होगा। प्रिय मित्र, परमेश्वर पिता जो कुछ कहते हैं उसका अर्थ होता है, कि वह अवश्य पूर्ण होगा। वह शामुएल को ईली याजक के परिवार के विरुद्ध दंड घोषित करने को कहते हैं। शामुएल ने सब कुछ ईली को बता दिया, जैसा कि 18वें पद में बताया गया है। यहां लिखा है, इसलिए शामुएल ने उसे सब कुछ बता दिया और उसे उससे कुछ भी नहीं छिपा रखा। तब ईली ने कहा, वह तो यहोवा है, जो उसको भला लगे वही वह करे। मित्रवर, यहोवा ने शामुएल द्वारा बोले गए वचनों को सफल किया और समस्त इसराइल प्रजा ने यह जान लिया कि यहोवा ने शामुएल को नबी के रूप में नियुक्त किया है। और शामुएल प्रभु में आगे बढ़ता गया, और 21वें पद में हम पढ़ते हैं कि यहोवा शीलो में पुनः प्रकट हुआ, क्योंकि यहोवा ने शीलो में अपने वचन के द्वारा अपने को शामुएल पर प्रकट किया। मित्र, परमेश्वर ने स्वयं को कैसे प्रकट किया? अपने वचन के द्वारा। आज भी परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा ही स्वयं को प्रकट करते हैं, और ये परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल है। आज भी वह पवित्र आत्मा द्वारा अपने वचन का प्रदीपन करते हैं, उसका स्पष्टीकरण करते हैं। जिस प्रकार से तीसरा अध्याय समाप्त होता है, हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। चौथे अध्याय का विषय है ईली याजक तथा उसके पुत्रों के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय की पूर्ति। इस अध्याय में हम देखेंगे कि इसराइली बिना शामुएल से परामर्श किए पलिश्तियों से युद्ध करते हैं और परिणाम पराजय होता है। वाचा का संदूक भी छिन जाता है और एली के दोनों पुत्र भी युद्ध में मारे जाते हैं। यह सूचना सुनकर एली भी मर जाता है। सो आइए देखें, पहला शामुएल 4 एक से 4 पद। इस प्रकार शामुएल का वचन सारे इसराइल के पास पहुंचा। उन्हीं दिनों में इसराइल ने युद्ध में परिस्थितियों का सामना करने के लिए निकलकर एबेनेजर के समीप डेरा डाला। जबकि फलिश्तियों ने अपेक में डेरा डाला, तब फलिश्तियों ने इसराइल के विरुद्ध व्यूह रचना की। जब घमासान युद्ध छिड़ गया, तब इसराइल पराजित हो गया। फलिश्तियों ने युद्ध भूमि पर ही 4,000 मनुष्यों को मार डाला। जब सैनिक अपने शिविर में लौटे, तब इसराइल के प्राचीनों ने कहा, यहोवा ने हमें फलिश्तियों से आज क्यों पराजित किया है? आओ हम शीलो से यहोवा की वाचा का संदूक ले आए, जिससे वह हमारे बीच में रहे और हमारे शत्रुओं की शक्ति से हमको छुटकारा दे। इसलिए उन्होंने लोगों को शीलो भेजा। वे वहां से करूबों पर विराजमान यहोवा सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक उठा लाए और एली के दोनों पुत्र होपनी और पीनहास भी परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ वहां थे। प्रिय मित्र, इस अनुच्छेद में हम इसराइल के अंधविश्वास को देख सकते हैं। वे वास्तव में परमेश्वर से कितनी दूर जा चुके थे, किंतु वह उसके संदूक के निकट थे और इसलिए वे वाचा के संदूक को अपने साथ रखना चाहते थे। मित्रवर, उस संदूक में कोई योग्यता नहीं थी। योग्यता तो परमेश्वर यहोवा में थी। आप एक संदूक में परमेश्वर को नहीं रख सकते। इसराइली अन्य जातियों के समान अंधविश्वासी हो चुके थे और साथ ही हम देखते हैं कि जिन याजकों को परमेश्वर दंड देने जा रहा है, वो भी उनके साथ हैं। वो उनके लिए याजक की सेवा कर रहे हैं। तब आगे हम पढ़ते हैं, तब यहोवा की वाचा का संदूक शिविर में पहुंचा, तब सारा इसराइल इतने ऊंचे स्वर से ललकार उठा कि पृथ्वी गूंज उठी। जब पलिश्तियों ने ललकार की आवाज सुनी, तब उन्होंने कहा, इब्रियों के शिविर में इस ललकार का कारण क्या है? तब उन्होंने समझ लिया कि यहोवा का संदूक शिविर में आ गया है। पलिश्ती इस भय से भयभीत हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा, परमेश्वर शिविर में आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हम पर हाय, क्योंकि ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई। हम पर हाय, हमको ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से कौन छुड़ाएगा? ये तो वही देवता है जिन्होंने मरुभूमि में मिस्रियों को सब प्रकार की महामारियों से मार डाला था। प्रिय मित्र, अंधविश्वासी प्रतिमा पूजक पलिश्ती इसी बात से भयभीत हो गए कि वाचा का संदूक शिविर में आ गया है। वे कहते हैं कि परमेश्वर उनके मध्य आ गया, किंतु अग्रिम पदों में हम समझ लेंगे कि यह वास्तविकता नहीं थी, ये मात्र अंधविश्वास ही था। 9 पद में देखिए, हे पलिश्तियों, हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो। पलिश्तियों के राजा ने उनसे कहना शुरू किया, हे पलिश्तियों, हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो, अन्यथा इब्री जिस प्रकार तुम्हारे गुलाम रहे हैं, उसी प्रकार तुम उनके गुलाम हो जाओगे। अतः पुरुषार्थ के साथ युद्ध करो। पलिश्तियों ने इसी प्रकार युद्ध किया, जिससे इसराइल पराजित हुए और प्रत्येक मनुष्य अपने तंबू को भाग गया। उस दिन महासंहार हुआ, जिसमें इसराइल के 30,000 पैदल सैनिक मार डाले गए। साथ ही परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया तथा एली के पुत्र होपनी और पीनहास दोनों मारे गए। मेरे मित्र, इसराइली हार गए, 30,000 इसराइली सैनिक मारे गए, वाचा का संदूक भी छिन गया तथा एली महायाजक के दोनों पुत्र भी मारे गए। प्रिय मित्र, कलीसिया के मध्य भी ऐसे ही अंधविश्वास को हम देख सकते हैं। इसराइली सोचते थे कि परमेश्वर संदूक में है। मित्र, ये आपका आत्मिक होना नहीं दर्शाता, ये अंधविश्वासी होना दर्शाता है। यदि आप आज भी भौतिक बातों में विश्वास रखते हैं, ये आपके अंधविश्वासी होने को दर्शाता है। परमेश्वर संदूक में नहीं वरन हृदय में रहता है, उसे वहीं बसना चाहिए। हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम परमेश्वर के साथ हैं या नहीं। तब 12 पद से हम पढ़ते हैं, उसी दिन एक बिन्यामीनी सैनिक अपने कपड़े फाड़े और सिर पर धूल डाले हुए युद्ध पंक्ति से भागकर शीलो पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तब एली द्वार के पास अपने आसन पर बैठे हुए मार्क की ओर उत्सुकता के साथ ताक रहा था, क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के संदूक के लिए कांप रहा था। वह मनुष्य समाचार देने के लिए नगर में आया और सारा नगर चिल्ला उठा। एली ने चिल्लाने की आवाज सुनकर कहा, इस हलचल और हाहाकार का क्या कारण है? तब उस मनुष्य ने तुरंत जाकर एली को सारा समाचार कहकर सुनाया। एली की आयु तो 98 वर्ष की थी तथा उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थीं, जिससे वह ठीक से नहीं देख सकता था। उस सैनिक ने एली से कहा, मैं ही वह व्यक्ति हूं जो युद्ध पंक्ति से आया हूं, मैं आज ही युद्ध पंक्ति से भाग कर आया हूं। तब उसने पूछा, मेरे बेटे क्या समाचार है? सो आइए समाचार को सुनते हैं। समाचार लाने वाले ने उत्तर दिया, इसराइल पलिश्तियों के सामने से भाग गया है और सेना के लोगों का भयानक संहार हुआ है। होपनी और पीनहास तेरे दोनों पुत्र भी मर गए हैं तथा परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। 18वें पद में हम पढ़ते हैं, जैसे ही उस व्यक्ति ने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, एली अपने आसन से पीठ के बल द्वार के पास गिर पड़ा, जिससे उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया, क्योंकि वह बूढ़ा और भारी था। उसने तो इसराइल का न्याय 40 वर्ष तक किया। प्रिय मित्र, हम देखते हैं कि इस प्रकार एली महायाजक की भी मृत्यु हो गई, उसके दोनों पुत्र भी मारे गए और इसराइल में से परमेश्वर की महिमा उठ गई, जैसा कि हम 19 से 22 पदों में पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार परमेश्वर ने एली और उसके पुत्रों को दंड दिया, साथ ही इसराइल प्रजा को भी उनके अंधविश्वास और परमेश्वर से दूर जाने का दंड मिल गया। एली की मृत्यु के पश्चात परमेश्वर ने शामुएल को अपने संदेशवाहक के रूप में प्रयोग करना आरंभ कर दिया। अब आज हम यहीं ठहर जाते हैं, अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दें, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
आज का कार्यक्रम सुनने के लिए धन्यवाद। श्रोता, हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आत्मिक रूप से प्रोत्साहन मिला होगा। यदि आप इस विषय में अपनी आत्मिक उन्नति के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक पोस्टकार्ड के द्वारा तुरंत इस पते पर हमसे संपर्क करें। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। हमारा ईमेल एड्रेस है hindittv@radiovv.org, hindittv@radiovv.org। इसी के साथ आज के हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।